आज हम खुदावंद अपने खुदा के जुड़ चुके और उसकी रहमतों को याद रखते हुए कि सदा तिकर है रहमत साडे रब दी। जब जब हम उसकी रहमतों पर गौर करते हैं, जब जब हम उसकी मोहब्बत पर गौर करते हैं, जब जब हम उसके तरस पर गौर करते हैं, तो हमारे दिल, हमारी सोच, हमारे ख्याल क्या हैं जी, इस बात के नतीजे में पहुंचते हैं कि उस जैसा कोई और खुदा नहीं है, उस जैसा कोई और भला नहीं है, उस जैसा कोई और तर्स करने वाला नहीं है। सो आए हम खुदावन खुदा जो सदा तिक्र है, जिसकी शफकत अबदी है, जिसका प्यार निराला है, उसके हुजूर झुकेंगे और उसके कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए मांगेंगे। हम सब खुदा के हुजूर झुकेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूं आज की सुबह के लिए जो तूने हम सबको फिर बख्श दी कि हमारे नथनों में जिंदगी का दम चल रहा है, हमारे हाथ पांव गर्दिश में हैं, हमारे सोचने की कुवत बहाल है, हम बोलने की कुदरत रखते हैं, हमें सुनने के लिए तूने कान दिए हैं, हमारी आंखों की रोशनी बरकरार है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि आज तेरा कलाम हम सबके कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदावन आज का कलाम हम सबके लिए बायस से बरकत हो, अपना कलाम हम सबकी रहनुमाई के लिए दे। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह नासरी के पाक और जलाली और मुकद्दस नाम में, आमीन आमीन। हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और कल हमने देखा था यीशु मसीह हैकल में जाता है। जब हैकल में जाता है तो उसने जाकर क्या किया, जो बेचने वाले थे, जिन्होंने कारोबार शुरू कर दिया था, उनको वो वहां से निकालता है और एक बड़ा ही जबरदस्त बयान यीशु मसीह देता है। और वो बयान क्या है, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा और तुमने इसे क्या बना दिया जी, डाकुओं की खो बना दिया। जब हम इस बयान को पढ़ते हैं तो ये बयान बहुत ही अहम है। ये बयान हमें सिखाता है कि यीशु मसीह ने यशाया नबी का वो सहीफा जो पुराने अहदनामा में से था पढ़ा और कहा कि मेरा घर क्या है जी, दुआ का घर है और तुमने इसका क्या किया है जी, गलत इस्तेमाल किया है। और हमने देखा था कि खुदा की हैकल के साथ साथ हम क्या हैं, उसकी हैकल है, उसके रहने की जगह है। इसलिए यीशु मसीह इस हैकल को साफ करता है उन तमाम नामुनासिब चीजों से जो उसके अंदर है, और खुदावन यीशु मसीह उन सबको उल्टा पुल्टा देता है और सबको बाहर निकालना शुरू करता है। वैसे ही यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में भी आता है, वो हमारी जिंदगियों में आता है और हम जिन बातों को अपना लेते हैं, जिन ख्वाहिशों के ताबिया हो जाते हैं, जिन आदतों के हम क्या हो जाते हैं जी, शदाई हो जाते हैं, उन सारी बातों को, सोचों को, ख्यालों को यीशु मसीह क्या करता है जी, फिर निकालना शुरू करता है ताकि हम अपनी जिंदगी में देखें कि उसका जो कोहे मकदस है, उसकी जो हैकल है, इंसान जो उसके रहने की जगह है, उसे क्या कर सके जी, सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। सो इसलिए जब हम पढ़ते हैं इस हवाले को तो फिर देखते हैं लूका की इंजील उसका 19वां बाप उसकी 25वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा, 45वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा। जरा अपने जहन में तस्वीर बनाएं, यीशु मसीह अभी अभी यरूशलम में दाखिल हुआ है, यरूशलम पर उसने रोकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया है कि तुमने मेरी आवाज को, मेरे कलाम को, मेरे तमाम हदायात को रद्द करके क्या किया है जी, अपनी राह ले ली है। और जब उनके इस सारे करदार पर, उनके कॉल फेल पर जब यीशु मसीह रोता है, तो आगे चलकर क्या करता है, जब वो हैकल में जाता है तो बेचने वालों को निकालना शुरू कर देता है। और ये बेचने वाले कौन है? वो तमाम कारोबार करने वाले लोग जिन्होंने खुदा के घर को, खुदा की जगह को, खुदा की इबादतगाह को, हर इबादत करने वाले को क्या बना लिया था जी? अपना मुनाफा कमाने का जरिया। पिछले दिनों में ये बड़ी अजीब मिसाल है जो देनी पड़ रही है कि कहते हैं कि जी बहुत बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां अब क्या करती हैं जी, जो तेल और पानी है जब वो मसा करके देते हैं तो उस पर रकम लगा दी गई है कि जी इस पर फलां खादम ने दुआ की हुई है, और इस पानी की बोतल कोई 15 रुपए की बेच रहा है, कोई 20 रुपए की बेच रहा है, कोई 30 रुपए की बेच रहा है। इस तेल पर खुदा के खादम ने दुआ की हुई है और इस तेल को मसा किया गया है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए इतने पैसे देने होंगे। और लोग जो खुदा का खौफ मानते हैं, वो लोग जो सही हो सकता है समझ नहीं रखते या अकीदत में कि खुदा शायद ऐसा ही करे, ठीक जैसे पुराण जब हम पे देखते हैं नए अहदनामा में, याद है कि एक बीमार था जो 38 बरस से कहां पर पड़ा हुआ था जी? हौज पर पड़ा हुआ था, वो पानी की जगह पर पड़ा हुआ था। और लोग वहां पर क्या लाते थे? अपने बीमारों को लेकर आते थे, जो तंदुरुस्त नहीं थे उनको लाते थे, जिनकी कोई भी बीमारी होती थी वो उस हौज पर, जिसे बैतसैदा का हौज कहते हैं, वो पानी की जगह जहां पर लोग इकट्ठे करते थे अपने बीमारों को, और वहां पर एक वक्त मुकर्रर था क्या होता था, खुदा का फरिश्ता उतरता था, पानी हिलता था, और उसकी हजूरी और मौजूदगी के दौरान जब फरिश्ता यहां पर होता था तो क्या होता था, जो पहले पानी में उतर जाता था उसकी जो कोई भी बीमारी होती थी वो जाती रहती थी, उसका बीमारी का रोग जाता रहता था। और वहां पर हम देखते हैं एक 38 बरस से बीमार बंदे को जो वहां पर पड़ा हुआ है, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं, कोई उसके पास नहीं, कोई उसको क्या है जी उस पानी तक ले जाने वाला नहीं बनता। तो यीशु मसीह वहां पर भी जहां पर ये सारा काम चल रहा है जाता है और देखता है, और सबको देखकर क्या करता है जी, ये 2 साल से बीमार है, ये 1 साल से बीमार है, ये 15 दिनों से बीमार है, इसे कोढ़ की बीमारी है, इसका सर दुखता है, इसका पांव दुखता है, इसका ये खराब है, उसका वो खराब है, सबको जब उसने देखना शुरू किया तो वहां पर उसने एक बंदे को देखा जो कितने सालों से बीमार था जी, 38 बरस। अपने वो बचपन से हमें नहीं पता कब बीमार हुआ, लेकिन टोटल उसकी उम्र क्या है जी, बीमारी की 38 साल से वो बीमार है, लाचार है, फरिश्ता उतरता रहा, पानी हिलता रहा, और कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। और यीशु मसीह ने उससे एक सवाल किया, क्या तू ठीक होना चाहता है? क्या तू चाहता है कि तू ठीक हो जाए? और उस बंदे का जवाब क्या है? हां मैं ठीक होना चाहता हूं, लेकिन कोई नहीं कि मेरी मदद करे। यीशु मसीह इस जगह पर जाता है, तमाम लोगों की बीमारियों को देखता है, और वो कहता है कि हां बजाय के किसी का सर दुखता है कि उसे ठीक किया जाए, बजाय के किसी का पांव दुखता है उसे ठीक किया जाए, बजाय के कोई बीमार है उसे ठीक किया जाए, ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, इनमें से क्या किया जाए जी, इस बड़े रोग को देखा जाए जो क्या है जी, बड़े सालों से इस बंदे को क्या करके रखा हुआ है जी, यहां पर बांधे हुए है, यहां पर रोके हुए है, ये चल नहीं सकता, ये हिल नहीं सकता, इसके पास कोई नहीं है। उसने ये सोच अपने दिल में रख ली है कि जब जब फरिश्ता उतरता है कोई मेरी मदद नहीं करता, तो यीशु ने कहा कि मैं क्या करूंगा, इन सब बीमारों में से एक को चुनूंगा और क्या करूंगा कि सबको याद दिला दूंगा कि मैं ना सिर्फ सर दर्द की कुव्वत रख सर दर्द को दूर करने की कुव्वत रखता हूं, ना सिर्फ मैं बीमारों को ठीक करने की कुदरत रखता हूं, मैं नामुमकिनात का खुदा हूं जिसे कोई इंसान नहीं कर सकता, जिसे कोई भी मुमकिन नहीं बना सकता। मैं नामुमकिनात का खुदा मुमकिन करने में क्या हूं जी, कादर हूँ। खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा क्या तू ठीक होना चाहता है, उसने कहा कि हाँ मैं ठीक होना चाहता हूँ, और उसने आगे से बहाना क्या करना शुरू कर दिया, कोई नहीं जो मेरी मदद करे। और यीशु मसीह उससे कह रहा है कि जिस पानी के हौज पर तू बैठा है कि फरिश्ता उतरे और आकर इसे हलाए, तू जो इस पानी को देख रहा है इस पानी के इंतजार में है कि फरिश्ता उतरे और तू उसमें जाने के लिए किसी की मदद का इंतजार करे, मैं तुझे बताना चाहता हूं खुदा का फरिश्ता खुदा का पैगाम खुदावंद यीशु मसीह खुद जो जिंदगी का पानी है, तू जो प्यासा है तू जो छूना चाहता है तू जो उसमें उतरना चाहता है और उतर नहीं सकता, तेरे जिंदगी का पानी नजदीक आ गया है। जैसे उसने सामरी औरत से कहा कि तेरे पास तो कुछ नहीं कि तू इस कुएं में से पानी निकाले, ये गहरा है और ये पानी क्या है जी किस तरह तू भरेगा। यीशु मसीह से कहता है कि अगर तू जानती कि जो तुझसे कहता है वो कौन है तो तू उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। यीशु मसीह इस 38 बरस के बीमार के पास आया है उस पानी के हौज पर जहां पर वो बैठे इंतजार कर रहा है और फरिश्ता आता है चला जाता है और वो 38 साल से क्या है जी वहां पर पड़ा हुआ है। और यीशु से कहता है कि तेरे पास जिंदगी का पानी चलकर आया है, तेरे पास जिंदगी का पानी चलकर आया है। जैसे पंजाबी की पाकिस्तानी कहावत बनी हुई है कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है। और यहां इस वाक्या में हम क्या देखते हैं, कुआं प्यासे के पास नहीं बल्कि कुआं और जिंदगी का पानी उस प्यासे उस बीमार उस लाचार के पास आता है कि उसकी जिंदगी में से ये रोग खत्म करे। यहां पर भी देखते हैं कि जब यीशु हैकल में गया तो बेचने वालों को निकालना शुरू कर दिया, दूसरे लफ्जों में उस घर की सफाई करना शुरू कर दी कि कौन सी बातें हैं तुमने अपना ली है जिनको निकालना होगा, तुमने बेईमानी को अपना लिया है इसे निकालना होगा, तुमने लोगों का फायदा उठाना शुरू किया हुआ है इसे खत्म करना होगा, तुमने खुदा के घर की इज्जत को क्या बना लिया है कारोबार की जगह बना लिया है इसे बंद करना होगा। और यीशु मसीह ने कहा लिखा है मेरा घर दुआ का घर होगा, तुमने इसे क्या बना लिया है जी डाकुओं की खो। आज भी यीशु हमारे दरमियान चलता फिरता है, वो सर दर्द को भी ठीक कर सकता है, वो छोटी छोटी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है, वो छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े मोजज़ात भी कर सकता है, लेकिन वो बहुत दफा क्या करता है ना सिर्फ हमारे हाथ को छूता है सर को छूता है पांव को छूता है पेट को छूता है कि वो छोटी छोटी बीमारियां जाते रहे, दरअसल वो हम पर निगाह करता है, वो चाहता है कि हम अपने अंदर से उस चीज को निकालें जो इंसान से नामुमकिन है ही नहीं, जिसे इंसान कर ही नहीं सकता। सो आज की सुबह यीशु मसीह हमारे दिल की सफाई करना चाहता है, यीशु मसीह हमारे साथ रफाकत रखना चाहता है, हमें क्या करना होगा सोचना होगा कि वो कौन सी आदत है, वो कौन सी बात है, वो कौन सा ख्याल है, वो कौन सी सोच है जो हमने पिछले 10 साल से 5 साल से 20 साल से अपनाई हुई है। यीशु मसीह कहता है कि मैं उसे ठीक करने की कुदरत और ताकत रखता हूं, क्योंकि वो क्या कहता है कि तुम मेरा मकदस हो। सो अब सवाल है हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हमारी जिंदगी में कौन सी ऐसी आदत हो सकती है जिसे यीशु मसीह को देना होगा। कौन सा ऐसा ख्याल है जो हमारे और यीशु मसीह के दरमियान है, और यीशु मसीह जब जब आता है वो कहता है मुझे इसे हटाना होगा क्योंकि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान क्या है, रुकावट है। ठीक वैसे ही जैसे हैकल में जब लोग जाते थे, जब हम पिछली दफा इसराइल में गए तो क्या हुआ, ये हवाला मैंने पूरा होता हुआ वहां पर देखा। यीशु मसीह ने क्या किया था जी, उस वक्त हैकल में से सबको निकाल दिया जो कारोबार का अड्डा बना चुके थे, मुनाफे का अड्डा बना चुके थे। जब दोबारा हम हैकल इसराइल में गए, यरूशलम में थे, तो क्या हुआ, गेट से अंदर दाखिल होते ही बाजार क्या है जी, लगे हुए हैं। ये पाक पानी है ले लो, ये क्या है जी, पाक मिट्टी है ले लो, ये पाक तेल है ये ले लो, ये आप अपने दरवाजे पर लगाओगे तो आपके घर में बरकत आएगी। बाइबल पुराने अहदनामा की शरीयत की आयात लिखी हुई उन्होंने शीशे में बंधी हुई रखी हुई है, पैक की हुई है। और वो माहौल जहां पर हम देखते हैं, मैंने वैसा ही देखा कि लोग क्या है जी, जितने लोग हैकल में जाते हैं कि जाकर क्या करें, खुदा से बात करें, खुदा की सुने, खुदा की तरफ तवज्जो करें, वो इर्द गिर्द की तमाम दुकानों में क्या होते हैं जी, खो जाते हैं। ये ले लो वो ले लो, ये ले लो कबूतरियां ले लो, ये ले लो वो ले लो कबूतरियां ले लो, ये कुर्बानी ले लो, ये जगह पर जाओ और ये खरीदना होगा, टोपियां ले लो अपना सर ढकने के लिए, वगैरह वगैरह के अड्डे आज भी लगे हुए हैं। और ये हवाला पूरा होता है कि तुमने मेरे बाप के घर की जो जगह, जो दुआ की जगह थी, उसे क्या बना लिया जी, कारोबार की जगह। सो ये तो हैकल का हाल हो गया। आज हम अपनी जिंदगी में गौर करेंगे कि जब यीशु हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहता है, कौन सी बातें रुकावट बनती हैं। अगर झूठ है तो हमें उसे खत्म करना होगा, कहना होगा यीशु मसीह से, यीशु हमारी जिंदगी में से झूठ को खत्म कर, ताकि जब तू हमारे घर में आए, जब तू हमारे साथ खाना खाने बैठे, तो हम तुझे पूरी तवज्जो देने वाले बने। अगर झूठ होगा तो क्या होगा, रुकावट होगी आपके और हमारे और खुदा के दरमियान। लालच होगा तो वो सही तरीके से हमारे साथ गुफ्तगू नहीं कर पाएगा, और इसीलिए खुदा की हजूरी रुक जाती है। और इन सारी बातों का हल खुदा ने क्या दिया है, मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना पहला बाप उसकी 9 आयत, वहां पर जब पढ़ते हैं तो लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने में सच्चा और आदल है, और तमाम नाराजगी से हमें पाक और साफ कर सकता है। अगर हम, अगर से मुराद हो सकता है कि हम इकरार करेंगे या ना करेंगे, लेकिन अगर इकरार करेंगे तो वो हमें धोकर पाक और साफ करेगा, जैसे यहां पर लिखा है यीशु मसीह ने हैकल में जाकर बेचने वालों को निकाला और कहा कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, और तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया, खो बना दिया, वो जगह बना दी। अगर हम इकरार करेंगे, आपके और मेरे पास हर रोज जब तक हमारे दिल की धड़कन चलती है, जब तक हमारे पास सुनने की कुव्वत है, जब तक हम देख सकते हैं, जब तक हम सांस ले सकते हैं, हम कह सकते हैं कि खुदा ने अभी अपना काम हमारी जिंदगी में नहीं रोका, तौबा का वक्त मौजूद है। हम हर रोज कह सकते हैं यीशु मसीह मेरे जिस्मानी हैकल में से उन बातों को, ख्यालों को, सोचों को, आदतों को दूर कर जो तुझे ना खुश करती हैं। यहां पर यीशु खुश है जी, जब उसने हैकल में देखा लोगों ने बेचना और कारोबार किया हुआ, यीशु खुश था जी? यीशु खुश नहीं था, क्योंकि उसके बाप के घर की जगह को, जो दुआ की जगह थी, वो क्या बन गई थी जी, डाकुओं की खो। जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में किसी बात को देखता है, मिसाल के तौर पर हम अगर माफ नहीं करते तो क्या यीशु इससे खुश होता है? नहीं, क्योंकि अगर हम माफ नहीं करेंगे और रोज पढ़ते रहें जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है, तो पा तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, तो क्या खुदावंद यीशु मसीह इस बात से खुश होगा, कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटी तू हर रोज इस दुआ को दोहराता है दोहराती है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हम ये दुआ तो बहुत दफा कर देते हैं कि आसमान पर भी तेरी मर्जी पूरी हो, जमीन पर भी तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन मेरी जिंदगी में ना हो। जब हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, जब हम तरस नहीं करते, यीशु मसीह कहता कि अगर तुझे याद आ जाए कि तूने किसी को माफ नहीं किया इससे पहले कि कुर्बानी चढ़ाने जाए, उस कुर्बानी को वहां पर छोड़ और जाकर अपने भाई से क्या कर, सुला कर, ताकि तेरी कुर्बानी कबूल हो, क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद हूं। इसलिए हमें अपनी अपनी जिंदगी में देखना होगा कि कौन सी बातें, कौन सी सोच, कौन सा ख्याल है जो यीशु को ना खुश करता है। और अगर हम उसका इकरार करेंगे, हमें माफ कर हमने झूठ बोला, हमें माफ कर हमने हसद किया, हमें माफ कर मैंने किसी के साथ ज्यादती की, मुझे माफ कर खुदावन मैंने किसी को बुरा भला कहा, मुझे खुदावन खुदा मुझ पर रहम कर मैंने किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, खुदावन खुदा मुझे माफ कर मैंने अपना हाथ किसी के ऊपर बेफायदा चलाया, खुदावन मुझको अपनी हिकमत और तनाई दे मैंने तेरे कलाम का बेफायदा इस्तेमाल किया, तो वो हमको माफ करने में सच्चा और आदल है। सो आए हम खुदा के सुर झुके और चंद लम्हों के लिए अपनी अपनी जिंदगी की अपनी अपनी हैकल पर गौर करेंगे और खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद खुदा तू हमें धोकर पाक और साफ कर। सब हम आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद तेरी तारीफ हो, तेरे रहम के लिए, तेरे तर्स के लिए, तेरी माफी के लिए, तेरी खुदावंद खुदा मोहब्बत जो पुश दर पुश रहती है, तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, खुदावंद तेरी शफकत का दरिया बहता रहता है, तेरे तर्स की खुदावंद खुदा बारिश होती रहती है, तेरा फजल खुदावंद खुदा हर रोज दस्तियाब है, तेरी माफी की खुदावंद खुदा इंतहा नहीं है। खुदावंद हमें धोकर पाक और साफ कर, तू हमारे दिलों के तमाम धागों को खुदावंद खुदा धोकर पाक और साफ कर सकता है, जैसे दाऊद ने कहा कि मुझे धोकर पाक और साफ कर जूफे से और मुझे नया दिल दे। खुदावंद हमारे सब दिलों को नरम कर, हमारी जुबान को इंसाफ के लिए, हमारी आंखों को खुदावंद खुदा रास्ते के लिए, हमारे कानों को दुरुस्त कलाम सुनने और खुदावंद खुदा हमारे हाथों को मदद के लिए, हमारे पांव को रास्तबाजी के रास्तों पर चलने के लिए, हमारे लबों पर अपने पाक फरिश्तों का पहरा बिठा, ताकि हम जो रास्तबाज नस्ल हैं रास्तबाज जिंदगी बसर करें। हमारे मुखालिफ को शर्मिंदा कर। आज आई हुई तमाम बहनों बच्चों बुजुर्गों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि यीशु मसीह आपकी हैकल को हर रोज साफ करे? हम सबको जरूरत है, तो यीशु के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो नहीं चाहता कि जैसे हम हैं वैसे ही रहें। वो इतनी मोहब्बत करता है कि हम उसकी शबी और सूरत पर ढलते जाएं और उस जैसे होते जाएं। आए खुदावंद खुदा का शुक्र करें और खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे और एक दूसरे के लिए बरकत और सलामती चाहें। आमीन।